क्या वायदा किया है? गीत क्या कहता था? बाबा तुमसा बनना ही है, साथ लिया है हाथ, हाथ कौन सा? श्रीमत, बहुत अच्छी गाइडेंस और बाबा का साथ, भगवान का साथ बनना है। तो बाबा की बहुत अच्छी उल्ली फिर से, इस बार तो एक ही लहर बहुत चल रही है, कौन सी? व्यर्थ से मुक्त, न समय को व्यर्थ करें न संकल्पों को, दोनों ही खजाने हैं, हम इन्हें खजाने मान लें। हैं खजाने? खजाने, खजाने मान लें कि हमारा समय भी साधारणता में न बीते, किसी का समय व्यर्थ बातों में बीतता है, किसी का समय साधारणता में बीतता है कि भाई काम काज कर रहे हैं हम, टाइम तो वेस्ट कर नहीं रहे, काम काज में समय बीत रहा है, साधारणता में समय बीतना। और किसी का समय और कैसे बीतता है? कम काम में ज्यादा समय, छोटी उलझनों में लंबा समय, बातों को जल्दी से जल्दी खत्म नहीं करते, बढ़ाते हैं तो समय भी बहुत और संकल्प भी बहुत। तो आज हम चर्चा करेंगे कौन कौन से गुण हम जीवन में अपनाएं जो व्यर्थ का फोर्स स्वतः ही कम हो जाए। मुरली को पहले एक दृष्टि में देखेंगे, दृढ़ता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, और क्या क्या था? गेट खोलने की चाबी कौन सी है? बेहद की वैराग्य वृत्ति, मेरेपन पर बहुत अच्छी बातें कही, सूक्ष्म देह अभिमान का स्वरूप, गिफ्ट मांगी और गिफ्ट दे भी दी, दी कौन से? नहीं, वो तो मांगी, दी, कहना और करना एक, और क्या बातें थी? और बोलो, चेहरे और चलन से सेवा। अगर हमारे मन में उलझन होती है तो वो हमारे चेहरों पर आती ही है, अगर हमारे मन में निराशा है, उदासी है, तो वो हमारे चेहरों से झलकती ही है, सेवा नहीं होती। और अगर हम रूहानियत में हैं, केवल खुशनुमा चेहरा नहीं, रूहानियत भरा चेहरा, पवित्रता की झलक दिखाने वाला चेहरा, आंतरिक प्रसन्नता को रिफ्लेक्ट करने वाला चेहरा, ऐसा चेहरा आत्माओं को बाबा की ओर आकर्षित करता है, हमें इससे सेवा करनी है। और भी कुछ था? बाबा तीव्र पुरुषार्थी, क्वेश्चन का क्या था? क्या, क्यों, कैसे से मुक्त हो जाएं, तो क्या होगा? तो चेहरा और चलन बहुत सेवा करेंगे, क्योंकि खुशनुमा हो जाएगा, नसीब भी खुश, नसीब माना भाग्य, भाग्य भी बहुत बड़ा, और वर्तमान जीवन में खुशी भी। वैसे भी जो बहुत खुश है वो बहुत भाग्यवान है, और हमारी खुशी बहुत आंतरिक है, बड़ी सूक्ष्म है, जिसमें प्योरिटी भी समाई होती है और प्राप्तियों की झलक भी। हम केवल तत्काल अपने को खुश नहीं करते कुछ याद करके, लेकिन परमात्म प्राप्ति और बहुत सारी प्राप्तियों का मिला जुला स्वरूप हमारे चेहरे से निकलता है, दिखाई देता है। तो हमें अपने जीवन को व्यर्थ से मुक्त करना है, उलझनों से मुक्त करना है, समस्याओं में उलझने न चलें। हम बहुत अच्छी तरह अपने को पक्का कर दें कि संकल्प की शक्ति हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति होगी, ब्रेन के लिए भी, निरोग रहने के लिए भी, सफलता के लिए भी, जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए भी, समस्याओं को जल्दी जल्दी समाप्त करने के लिए भी होगी या नहीं। जिसके पास संकल्प की एनर्जी बहुत है उसका मार्ग बिल्कुल साफ है, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। संकल्प कहाँ पहुंचते हैं, पहले ब्रेन में। ब्रेन में हमारे संकल्प अनेक चीजें करते हैं जिसका हमें पता नहीं। मैं सोच रहा था, बाबा ने कहा जब तुम पावन बन जाओगे संपूर्ण तो तुम इस संसार में नहीं रह पाओगे, जाना होगा। क्यों? मैं सोच रहा था क्यों, हाँ रहने लायक तो नहीं होगा। हम थोड़ा सूक्ष्मता से इस पे चिंतन करेंगे। देखो, पावन बनना माना, पावन शब्द और पवित्रता शब्द दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये पावन अर्थात जिसमें विकर्म भी सब नष्ट हो गए, आत्मा शुद्ध हो गई पूरी तरह से, विकर्मा का फोर्स भी खत्म हो गया, और पवित्रता ब्रह्मचर्य से संबंधित संकल्पों को शुद्ध करना। तो देखो, विचार करो, सतयुग में एक दिन पहले भी हमने चर्चा की थी, मनोवैज्ञानिक मन की तीन स्थितियों की चर्चा करते हैं, आप सबको ये ज्ञान भी हो। कॉन्शियस माइंड माना चेतन मन, जिससे हम सोच रहे हैं, अवचेतन मन, आधा चेतन, सब कॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारी स्मृतियां छुपी रहती हैं। आज सब हमने सवेरे से जो काम किया वो हमारी स्मृतियों में है, सब छुप गया है, भूल गया है, लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड में समाता रहता है। फिर वो चीजें जाती रहती है अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन, यानी मन की वो स्थिति जहां हम कुछ सोच नहीं रहे। उसमें क्या है कि जन्म जन्म का सब कुछ भरा हुआ है, ये जो विकर्म है, जो गंदगी है, वो सब भरी हुई है अनकॉन्शियस माइंड में। फिर वहां का इफेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे, वहां का इफेक्ट कॉन्शियस माइंड पे, चेतन मन पे पड़ता रहता है। तो मनोवैज्ञानिक ऐसा महसूस करते रहे कि जो अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन, उसे बैड एनर्जी आती रहती है मन में, ब्रेन में। वो पता नहीं चलता क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि वो सब भरा हुआ है उसमें निगेटिव, पाप कर्म, विकर्म, बुरा सब संस्कारों का इफेक्ट। अब हम संपूर्ण पावन हो गए, अनकॉन्शियस माइंड खाली कर दिया हमने, तो ब्रेन को निगेटिव एनर्जी जाएगी नहीं, ब्रेन बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल शुद्ध हो गया, तो ये प्योर एनर्जी हमारे शरीर में फैलेगी ना। फिर शरीर है इम्प्योर तत्वों का, इम्प्योर तत्वों का है ना, वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, समा नहीं पाएगा, तो शरीर छूटने लगेगा, फैट छूट जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आत्मा से संपूर्ण प्योर एनर्जी चारों ओर फैलने लगी। जैसे सतयुग में हम पहले जन्म में हैं, सोचो आत्मा अभी अभी उत्तरी पहला जन्म लिया, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं, मेमोरी में कुछ नहीं, अनकॉन्शियस माइंड जैसे है ही नहीं, तो कैसा जीवन होगा। डॉक्टर साहब, आप लोगों का सब्जेक्ट है, कितना दिव्यता से भरा हुआ जीवन होगा ना देवताओं का, कुछ भी नहीं, डॉक्टरों की आत्माएं तो होंगी, डॉक्टर नहीं होगा तो हम सभी मन को व्यर्थ से मुक्त करें और जीवन का आनंद देखें, बहुत आनंद हो जाएगा जीवन में, संगम युग का सच्चा सुख मिलेगा। तो अब हम दो चीजें लेंगे, व्यर्थ से खुद को मुक्त करना और बुद्धि योग को स्थिर करना। अव्यक्त महावाक्य है, तुम्हारी साधना है बुद्धि योग को स्थिर करने की। बुद्धि बहुत भटकती है, फट से स्लिप हो जाती है, स्थिर कर दे। बाबा के स्वरूप पर स्थिर है तो है, जैसे हमारी कोई बहुत मनपसंद चीज हो, सुंदर चीज हो, हम उसे देखने लगे और नेत्र वहां से हटे ही नहीं, ऐसे बुद्धि का नेत्र बाबा से हटे नहीं, अपने किसी भी स्वरूप से हटे नहीं जिस पर हम उसको एकाग्र करना चाहें, इस स्थिति पर हमें अटेंशन देना है। बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा हमें जीवन में। तो कौन कौन सी धारणाएं हैं जो व्यर्थ के फोर्स को समाप्त कर देती हैं? बोलो, आप सब जानते हैं उन्हें, सबको अनुभव है उनका। कौन सी धारणाएं हैं बोलो, आप जानते हैं? नहीं, और सोचो। धारणाएं, गुण, गुण की चर्चा हम कर रहे हैं। संतुष्टता, अब आपकी बुद्धि चलेगी अच्छी तरह से। संतुष्टता, साक्षी भाव, बहुत बड़ी धारणा। सहनशीलता, अवगुण न देखना। सरलता, धैर्य, निर्माणता, बस इतनी ले लें। गंभीरता, अंतर्मुखता, एक ही चीज हो जाएगी लगभग। सरलता, सहनशीलता, संतुष्टता, निरहंकारिता, मैंपन का त्याग, चार तो ये दैवी गुण। साक्षी भाव, बहुत अच्छी चीज, ड्रामा के ज्ञान पर अचल अडोल, बाकी पर चिंतन न करना, प्रदर्शन न करना, अपने महान लक्ष्य की ओर चलना। देखो, हम संतुष्ट हैं। संतुष्टता कब आती है? प्राप्तियों से, इच्छाओं के त्याग से। अब हम इसका दूसरा पहलू भी देखें। इच्छाएं मनुष्य के मन को बहुत भटकाती हैं, चाहे वो मान की इच्छा हो, चाहे स्थूल वस्तुओं की इच्छा हो। इच्छाएं मन को बहुत भटकाती हैं। इच्छाओं को कम करना, योगियों को अपना जीवन कैसा बनाना है? हाँ, कोई इच्छा ही नहीं है। जैसे आत्मा तृप्त हो गई है, और जब हम इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं तो क्या होता है? इस रहस्य को भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जो चीज हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वो स्वतः ही मिलती रहती है। ऐसा नहीं कोई सोचे कि हम इच्छा ही नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरों के पास बहुत माल ठाल होगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा। जानकी दादी को देखो आप। मेरे अनुभवों में वो, मैं ऐसा कह सकता हूं, सबसे बड़ी त्यागी रही है। मैंने उनको 45 साल से तो देखा अच्छी तरह से, सबसे बड़ी त्यागी। तपस्या तो है ही, पर त्याग बहुत साधारण रहती थी वो। ये चमकीले सी साड़ियां पहननी तो अभी शुरू की है, जब लोगों ने कहा कि दादी विदेश में रहती हो आप, VIP मिलने आते हैं, नहीं तो बिना प्रेस की साड़ी, हाथ से धोई हुई साड़ी, उसमें चमक तो नहीं आती ना, सफेदी नहीं आती। अब आप देखो, उन्होंने संपूर्ण त्याग किया, और आज बस आगे तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है ना। तो इच्छाओं के त्याग करने से कोई ये ना सोचे कि हमें अभाव रह जाएगा। इच्छाओं का त्याग साधनों को आकर्षित करेगा, और हम उसके अधीन न हो, हम अपने अधीन रखें उनको। अपने अधीन रखने का अर्थ है साधनों के वश न होना। अर्थात मान लो हमारे पास एक बहुत सुंदर कार है, बड़ी अच्छी, हम उसमें बैठ के आनंद लेते हैं। कल ऐसा समय आ गया कि छोटी सी मारुति में हमें घूमना पड़े, तो ऐसे में क्या होगा? लोगों को लज्जा आएगी, कोई देख न ले, खुशी खत्म, अनेक संकल्प, कैसा मेरा भाग्य हो गया, क्या हो गया ये, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ये हो गई कार की अधीनता, बेकार हो गया ना कार। बेकार हो सकता है, सबकी कार बेकार हो जाए, तेल ही न मिले, अभी भाव बढ़ रहे हैं। तो हम इनके अधीन नहीं। हमारे पास मोबाइल ही है, छोटी सी चीज, बड़ी काम की चीज आजकल, बड़ा सहज भी कर दिया बहुत काम, लेकिन कल ये ना हो, कल होगा नहीं, ये पक्का है। एक दिन आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाएगा, जिस दिन पहला एटम बम छूटा ये सब खेल खत्म। सबके मोबाइल डब्बे टोकरियों में बिका करेंगे, 5 रुपए किलो ले जाओ। तो हम इनके अधीन नहीं, इच्छाओं का ऐसा त्याग। सभी देखें, कोई इच्छा मुझे परेशान तो नहीं करती। इसमें दूसरा पहलू है कि हम इच्छाएं भी रखते हैं, इच्छाएं भी रखें, लेकिन अगर वो पूर्ण नहीं होती तो छोड़ दें, उसका भी त्याग कर दें। इच्छा हमें व्यर्थ संकल्पों की ओर न ले चले। ये संतुष्ट आत्मा, ऐसी संतुष्ट आत्मा अनेक व्यर्थ से सहज ही मुक्त हो जाएगी। मैं पन जिसकी बाबा बहुत चर्चा कर रहे हैं, क्यों चुना बकरे को, बाबा ने याद दिलाया ना, बलि चढ़ानी चाहिए थी अपनी, बाबा कह रहे थे। मैं पन की चढ़ा दी बकरे की, मैं बहुत करता है, हम मैं की बलि चढ़ाएंगे। हम देख सकते हैं बाबा का एक बार एक बहुत सुंदर महावाक्य मिला, बहुत पहले की बात है, कि अगर तुम 10 मिनट योग में बैठो और चेक करो कि मन कहाँ जाता है, तो उसके भागने के दो ही द्वार होंगे, मैं और मेरा। इससे अपने को मुक्त करते चले। बहुत सूक्ष्म है, स्थूल नहीं, बहुतों को समझ में भी नहीं आता, बहुतों की बुद्धि से परे है, बहुत समझते हैं मेरे पास तो मैंपन है ही नहीं। लेकिन अगर योग नहीं लगता, अगर खुशी नहीं रहती, तो मैंपन ही है। अगर मन में परेशानी है, अगर मन भारी रहता है, अगर स्थिति अपसेट रहती है, तो मैं और मेरा कहीं ना कहीं है। देखो एक छोटी सी बात, तुमने मुझे ये बात क्यों कही, मेरी इंसल्ट क्यों की, ये मेरापन है या नहीं, ये भी मेरापन है। एक बहुत बड़ी चीज जो संसार में भी देखी जाती है और बाबा भी अपने महावाक्यों में हमें सुनाते ही रहते हैं, मैं राइट हूँ। संघर्षों का कारण, कोई भी व्यक्ति अपने को गलत नहीं मानता, मैं राइट हूँ तुम गलत, ये मैंपन का बहुत रॉयल स्वरूप। तो मैंपन की कुछ बातें बाबा ने भी कही और बहुत सारी बातें हम अपने चिंतन में निकालें। मैं जिम्मेदार हूँ बच्चों की, मुझे इनके लिए बहुत कुछ करना ही पड़ेगा, संकल्प उठता है ना, बात तो ठीक है, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि संकल्प गलत है, माँ बाप की जिम्मेदारी है और बच्चों के लिए बहुत कुछ उन्हें करना है। परंतु हम ज्ञान से क्या जानते हैं अब, और कुछ सोचो, हाँ बोलो आगे। हरेक आत्मा जो आपके घर में आपके बच्चे बनकर आए हैं, पोतरे बनकर आए हैं, वो हरेक अपने कर्मों का लंबा चौड़ा खाता भी तो साथ लेकर आए हैं, उसका कोई क्या करेगा। तो यहाँ उस खाते के बीच में और आपकी भावनाओं के बीच में संघर्ष हो रहा है। माँ बाप चाहते हैं हम बच्चों के लिए ये करें और बच्चे कुछ और हैं, क्योंकि उनके साथ अपना पूरा अकाउंट चल रहा है। इन दोनों में ज्ञानी बैलेंस रखेंगे, कर्तव्य भी निभाएं, साक्षी भी रहें, निश्चिंत भी रहें, बच्चों के कारण परेशान भी ना हो, क्योंकि भारत की कल्चर पर भी वेस्टर्न कल्चर का बहुत बुरा इफेक्ट होता जा रहा है। जब हम ये बात कहते हैं तो कई वेस्टर्न वाले पूछते हैं, हमारी कल्चर इतनी खराब है क्या जो तुम भारत वाले कहते हो, भारत वेस्टर्नाइज होता जा रहा है, हम बुद्धू हैं क्या, हमारे पास बुद्धि नहीं है क्या। परंतु कुछ बातों में उनके पास इग्नोरेंस है, संपूर्ण ज्ञान है, और वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है प्योरिटी। वेस्टर्न वर्ल्ड में प्योरिटी का ही ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का तो कहीं भी नहीं। भारत में अभी तक भी चाहे कोई पवित्र बने न बने, सब जानते हैं प्योरिटी सबसे अच्छी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। तो इस कारण उसका जो बुरा इफेक्ट हो रहा है। अब देखो मेरे सामने एक प्रश्न आया था, किसी ने पूछा कि हमारे बच्चे चाहते हैं माँ बाप हमें रोके नहीं, हम अपनी तीन तीन गर्लफ्रेंड रखें, वेस्टर्न कल्चर। अच्छा रख लो, कर लिया आप ही शादी, पांच साल के बाद क्या हुआ, तुम अलग हम अलग, वो ही विदेशी प्रभाव, डाइवोर्स। अब भारत में डाइवोर्स, वहां तो आदत पड़ गई है लोगों को। मैं हंसी में कहा करता हूँ, पतियों को पत्नी बदलने की आदत, पत्नियों को पति बदलने की आदत वेस्टर्न में कॉमन है। वो ख्याल ही नहीं करते, तुम अलग हम अलग, चलो अकाउंट तुम्हारा अलग, मकान हमारा अलग, कार हमारी अलग, तुम्हारी अलग, अलग हो गए। लेकिन इफेक्ट क्या होता है साइकोलॉजिकली, अंत तक आते आते जीवन में अगर वहां के 60 साल के बाद के लोगों के मन की स्थिति को आप रीड करें तो पाएंगे उनके पास कुछ नहीं बचा है। भावनाएं मर गई, खुशी मर गई, शांति मर गई, मानवता के प्रति घृणा हो गई, निगेटिविटी से भरा हुआ जीवन। इसलिए भारत महान देश है, यहाँ एक बार डाइवोर्स हो जाए तो लोगों का जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है, इससे बचेंगे। आजकल के युवकों को भी माँ बाप जितना ये बात सिखा सकें, जितना वो सीखें, सीखते तो कम हैं, फिर भी कोशिश करनी है कि वो इन चीजों से बचें। ये व्यर्थ को बढ़ावा देते हैं। और हम सोच देखें, सहनशीलता, एक व्यक्ति सहनशील है तो अनेक तरह के व्यर्थ समाप्त हैं। एक व्यक्ति को फीलिंग बहुत है, वो हर बात के बारे में ज्यादा सोचता है तो संकल्पों का तूफान है। हम एक आदत बनाएंगे आज से, सभी जो भी यहां बैठे हैं, बड़ी बात को छोटा करना, और इसी में जोड़ दें दूसरा, बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करना, जिसको व्यर्थ को खत्म करना हो, जो बाबा की इस भावना का सम्मान करते हो कि देखो बाबा हम सभी को कितनी श्रेष्ठ भावना के साथ कहता है व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, क्योंकि वो भविष्य को देख रहा है कि जो आत्माएं व्यर्थ से मुक्त होंगी वो संसार में बड़े बड़े काम कर पाएंगी, हीरो एक्टर बन जाएंगी, और जो अभी से व्यर्थ में रहती हैं विनाश काल में उनका व्यर्थ अब से 100 गुना बड़ा हो जाएगा। ये जानना चाहिए हमें, 100 गुना बढ़ जाएगा उनका व्यर्थ। इसलिए बड़ी बात को छोटा करना और बातों को जल्दी से जल्दी समाप्त करना, ये हमें कला सीखनी है। पसंद है? सब इसको अपने जीवन में अपनाएं। बातें बहुत हैं दुनिया में, वो बढ़ती जाएंगी, हम उलझते जाएंगे, बातों को जल्दी खत्म करेंगे तो आप देखेंगे वो बातें ही खत्म हो गई। समझते हैं ना ये बात, जिस बात के कारण हम चिंतित हैं, हमने चिंता छोड़ी, वो बातें ही खत्म। समस्याओं के बारे में भी यही है, समस्याओं के बारे में जितना हम चिंतन करेंगे, जितना उनकी चिंता करेंगे, जितना रिएक्शन करेंगे, समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और जितना समस्याओं को इग्नोर करेंगे, सरल चित्त हो जाएंगे, छूट जाएंगी वो हमें। ऐसा अपना एटीट्यूड, ऐसा जीवन जीने का तरीका हमें अपना लेना है कि ज्यादा सोचने की आदत नहीं। मैं इसको बार बार कह रहा हूं आपको, विचार करें सभी, किसी बात पर हम बहुत ज्यादा तो नहीं सोचते, अनुमान और ज्यादा सोचने की आदत, ये बहुत ही खतरनाक हैं दोनों। एक माता ने मुझे फोन किया, उसे बहुत डर लगता है मरने से, ज्ञानी है वो। मैं तो हंसी में उसे कहा तो न मरना, जरूरी है क्या मरना, हंसने लगी कि मरना तो पड़ेगा। कहा नहीं, क्यों मरती हो, 5000 साल जियो ना, मरे मजे से जियो, तुम भूल गई तुम आत्मा हो, आत्मा मरती नहीं है। कहा मुझे बहुत डर लगता है, टाउन में कोई भी मर जाता है, मरा वो हाल मेरा खराब होता है। अब उसको इतने संग सारी सुना दी उसने, मैं देख नहीं सकती किसी की डेड बॉडी, अर्थी जाते हुए मेरी नींद खत्म हो जाती है, उदासी रहती है, मुझे भी मरना पड़ेगा। व्यर्थ संकल्पों का कारण डर। मृत्यु क्यों ये डर है वो अलग बात है कि पूर्व जन्मों में मृत्यु के समय उस आत्मा को बहुत कष्ट हुआ है, भयानक रूप हुआ है मृत्यु का, चाहे किसी बीमारी ने बहुत कष्ट दे दिया मरने तक, चाहे अग्नि ने बहुत कष्ट दे दिया मृत्यु के इसमें, तो भय समा गया है। अब हम देह से न्यारे होने का जितना अभ्यास करेंगे, मृत्यु ऐसे होगी जैसे वस्त्र उतार दिया, बस इतना ही होगा। तो मृत्यु से भी डरना नहीं, ये भिन्न भिन्न तरह के भय जीवन में बहुत ज्यादा व्यर्थ को बढ़ावा देते हैं। फेल होने का भय, असफल होने का भय, फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ अटैचमेंट, फियर ऑफ अनसक्सेस, ये हम ध्यान दें, इनसे हमें मुक्त होना है। अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाएं, निर्भयता को बढ़ाएं, व्यर्थ खत्म होने लगेगा। आत्मविश्वास की कमी के कारण, अपनी शक्तियों को न पहचानने के कारण, छोटी बातों में हमें बहुत संकल्प चलते हैं। मैं याद दिला दूं फिर से, बाबा की साल की सीजन की पहली मुरली, तुम्हारे पास शक्ति है हर संकल्प को पूरा करने की, हम स्वीकार कर लें इसे। देखो भगवान ने कह दिया ना, स्वीकार है या नहीं, सब अपने से बात करो, मेरे पास शक्ति है हर संकल्प को पूरा करने की, तो मैं अच्छे से अच्छे संकल्प करूं वो पूर्ण होंगे। अविश्वास की जरूरत नहीं, फेल होने के घबराहट की जरूरत ही नहीं, किसी भी फील्ड में फेल होना, असफल न हो जाएं। कईयों को यही डर रहता है, ज्ञान में चल रहे हैं, कहीं कल असफल न हो जाएं हम, हमारा ज्ञान न छूट जाए, हमारा बाबा न छूट जाए। अनुमान और भय, जहां ये दोनों मिल जाते हैं वहां बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो हम महत्व देंगे समय को भी, संकल्प को भी, और बिल्कुल स्वीकार कर लें ये दोनों हमारे खजाने हैं। सोच लें सभी, जैसे हम धन को सुरक्षित करेंगे ना, बचाएंगे, धन के बारे में या कोई और मूल्यवान चीज हमारे पास हो उसके बारे में हम कितने केयरफुल रहते हैं, ध्यान रखना है भाई। संकल्प और समय सबसे बड़े खजाने, पीछे तो बाबा ने कह ही दिया था, सबसे बड़ा खजाना है समय। वैसे ही हम देख लें, हमें ट्रेन पकड़नी हो और हम आधा मिनट लेट पहुंचे, ट्रेन छूट गई हो, हम तो कहेंगे ना आधा मिनट बस, लेकिन खेल तो बिगड़ गया, अब हम जहां जाना चाहते थे वहां नहीं जा पाएंगे, समस्या खड़ी हो जाएंगी, कहां से रिजर्वेशन हो, सारे प्रोग्राम कैंसिल हो जाएंगे, चिंता हो जाएगी ना। हो सकता है हम किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, सब प्रोग्राम फेल हो गया, आधा मिनट केवल, इतने में ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी, आधा मिनट तो बहुत होता है ना ट्रेन के लिए। तो हमारा एक एक क्षण कीमती है। बाबा ने हमें अंतिम पेपर के लिए तो बहुत सावधान किया हुआ है, बाबा का डायरेक्शन मिलेगा सेकंड का, देह से देवान से न्यारे हो जाओ, जो हो गए वो संपूर्ण सफल, जो नहीं हो पाए वो असफल। अब हम इसके महत्व को शायद नहीं समझते हैं, लेकिन होगा ऐसा कि मान लो हमारे पास बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं और हमें आंतरिक प्रेरणा प्राप्त हुई बाबा की, ऐसा दीदी हो जाओ घर चलना है, और हम संकल्पों को शांत न कर सके तो बाहर के जो संकल्प होंगे वो हमें खींचते रहेंगे, हम जा ही नहीं पाएंगे, कष्टों में हम आ जाएंगे, कष्ट महसूस करने लगेंगे, कष्ट। तो हम बिल्कुल आज हम सब सच्चे दिल से, जैसे बाबा ने दृढ़ संकल्प कराया ना, व्यर्थ को समाप्त करना है। देखिए, एक संकल्प से तो काम नहीं होता, हम सब जानते हैं, ये बहुत लंबी यात्रा है हमारी। लेकिन जैसा हमने पहले भी एक बात कही थी कि हम ये देख लें मुझे किस तरह के व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं, दो तीन देख लें, ज्यादा नहीं, दो तीन बस, उनको खत्म करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज रहेगी। हर एक के व्यर्थ संकल्पों की एक विशेष दिशा होती है, भाई ये नहीं होता तो बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कई लोग हम में से ऐसे हैं, एक दिन अमृत वेला मिस हो गया, मान लो 4:30 बजे उठे, उठते ही अपसेट, सारा दिन परेशान। अब आधा घंटा मिस हुआ तो शेष घंटे भी निगेटिविटी में, व्यर्थ में निकाल देते हैं। कुछ लोग दूसरे तरह के हैं, रोज 6 बजे उठेंगे और मस्त रहेंगे, उठना ही 6 बजे है, जीवन ही वही है, अमृत वेला कोई और कर लेगा, क्या करना हमें, हमें कौन सी राजाई लेनी है। हमारे यहाँ एक था, वो कहा करा हमें तो एक झोपड़ी चाहिए सतयुग में, राजाई तुम करना। वो खुले हम बोलता था, अपने को राजाई वाजाई के चक्कर में नहीं जाना है, अपने को तो एक झोपड़ी चाहिए, क्या करना है इन चक्करों में जाके। वो मस्त रहते हैं, लेकिन ये मस्ती अलवेलापन है, ये मस्ती नहीं, क्योंकि उनसे कुछ होता नहीं है, तो वो ये स्वीकार कर लेते हमसे कुछ होता नहीं, अपना तो इतना ही थोड़ा सा ही ठीक है, सुख तो वहां हो गए, चलो ठीक बात है। लेकिन हमें एक अच्छा लक्ष्य बनाए। मैं तो आप सबको भी एक ही बात कहूंगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने परिवार के लिए भी, माताएं भाई अपने बच्चों के लिए भी, हमें भविष्य में जीना होगा, बोलो, संसार के लिए देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बहने सब जानती हैं, पेशेंट सामने हो, अपना खाना भी छोड़ना पड़ता है ना, ऑपरेशन चल रहा है, खाना होगा 1 बजे, खाएंगे 4 बजे, देना पड़ता है ना समय, दूसरे के दुख दर्द को मिटाने के लिए अपने समय को भी डेडिकेट करना पड़ता है ना। तो हम सब भी विश्व के लिए हों आने वाले समय में, हमें अपने को इसके लिए तैयार करना है। तो एक बहुत अच्छा संकल्प मैं आपको देना चाहता हूं। बहुतों ने अपना जीवन सेवाओं के लिए डेडिकेट कर दिया, डेडिकेट माना समर्पित कर दिया, मतलब कुर्बान कर दिया, हमारा संपूर्ण समय सेवाओं के लिए है, हमारे लिए नहीं। अब ग्रस्त में रहने वालों ने, कईयों ने भी संकल्प कर लिया होगा, हमारा जीवन बाबा का है, उसके लिए एक मन में डेडिकेशन की भावना है। मैं आपको कहूंगा, योगी बनने के लिए स्वयं को डेडिकेट कर दो, बाकी सब चीजें हटा दो, नहीं ये कुछ नहीं, न इच्छा, न ये, न खान पान, कुछ नहीं, कहीं भी रह ले, कैसे भी रह ले, कुछ भी खा ले, कैसे भी जीवन जिए, संपूर्ण एनर्जी, अपनी संपूर्ण ताकत योगी जीवन बनाने के लिए लगा दें। चिंतन करना आप इस पर। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं योगी सब नहीं बन सकते। कोई एक विदेश की बहन मेरे को कह रही कल कि बहुत सारे बाबा के बच्चे आए हुए, योगी बहुत कम दिखाई देते हैं, कितने होंगे सारे संसार में योगी। मैंने कहा भाई मैं गिनती तो नहीं की है, मेरे पास लिस्ट तो नहीं होती, पर श्रेष्ठ योगी 108 और बाकी अच्छी योगी आत्माएं 1008, इतने तो हैं जिनसे संसार चलता है। डेडिकेट करें अपने को, समझ रहे हैं ना ये भाषा, डेडिकेट करता है ना। देखो एक विद्यार्थी हायर कंपटीशन दे रहा है, 1 मास में उसके एग्जाम हैं, अपना सब कुछ डेडिकेट कर देता है ना, समय, संकल्प शक्ति, अपने सारे शौक, सारे इंटरेस्ट, टीवी देखना, स्पोर्ट्स में जाना, के कमेंट्री सुनना, ये सब डेडिकेट कर देता ना, पढ़ाई, उसे पता है इसका बड़ा महत्व होगा भविष्य के लिए, अब अगर दिल से काम कर लिया तो सारा जीवन सुखी हो जाएगा। हम भी अपना सर्वस्व योगी भव के लिए डेडिकेट कर दें। जो भी आप में से पकड़ सके इस बात को, योगी बनने के बाद बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। दो ग्रुप हो जाएंगे हम ब्राह्मणों के बीच से आगे आने वाले समय में, एक छोटा ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप। छोटा ग्रुप संसार को देने वाला, बड़ा ग्रुप सेवाओं को संभालने वाला। संभालना होगा, लाखों लोग आएंगे हमारे पास, दोनों ग्रुप काम करेंगे, लेकिन महत्व किसका होगा? देने वालों का, जो संसार को देंगे, जिनके वाइब्रेशन संसार के दुख हरेंगे, जिनकी श्रेष्ठ भावनाएं दूसरों को तनाव से मुक्त करेंगी। ऐसी योगी आत्माएं जो थोड़ी होंगी, हर जगह होंगी, एक एक दो दो। ये इस ड्रामा का एक विधान है, इस तरह ये बना हुआ है कि संसार में अलग अलग क्षेत्र में एरिया वाइज कुछ महान पवित्र योगी आत्माएं रहेंगी, जिनके वाइब्रेशंस वहां की आत्माओं को सहारा देंगे। तो ये काम उनके द्वारा ही होगा जिसने अपने को व्यर्थ से मुक्त कर लिया होगा। आप सबको याद हो बाबा की ये बहुत अच्छी डेफिनेशन, संपूर्ण पवित्रता अर्थात न केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, परंतु साधारण संकल्पों से भी मुक्त। क्योंकि अगर साधारण संकल्प चल रहे, व्यर्थ छूट गया, फिर कामकाज के साधारण संकल्प मन में चलते हैं, तो भी आत्मा में तेज नहीं आता, शक्तियां नहीं आती। हम सुखी रहेंगे भाई, व्यर्थ नहीं चल रहा है, पर देने की एनर्जी, हम वाइब्रेशन से संसार के काम आए बहुत, वो सब इससे नहीं होता है। संकल्प करें अटेंशन पूर्वक, हमें हर तरह के व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करना, ये धारणाएं हैं। और साथ में मन की दिनचर्या, क्योंकि मन के भागने की गति इतनी सूक्ष्म है, उसको समझना भी कठिन होता है कभी कभी। घंटे के बाद अगर हम याद करें हमने पिछले घंटे में कुछ व्यर्थ सोचा क्या, तो याद आएगा? याद भी नहीं आएगा। कोई विशेष व्यर्थ चला हो तो पता रहेगा भाई ये व्यर्थ चला, अन्यथा अब हम सोचे आज सारे दिन में हमने कुछ व्यर्थ सोचा क्या, तो हार्डली कुछ याद आएगा, आएगा ही नहीं। इसलिए मन की दिनचर्या बना लेना, कुछ अच्छे अभ्यास कंटिन्यू रखना, कुछ अच्छे स्वमान के अभ्यास रखना, देवान से न्यारे होने की प्रैक्टिस रखना, आत्मिक दृष्टि रखना, ये व्यर्थ को समाप्त करने के दूसरे तरीके। उन गुणों से व्यर्थ कम होता जाएगा और इन साधनाओं से श्रेष्ठ संकल्प भरेंगे, बाकी बचे हुए व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे। आत्मिक दृष्टि पर भी सबको ध्यान देना है। चाहे हम पर्पजली देह देखते नहीं हैं, पर दिखाई तो देह देते हैं ना, देह को हम देख रहे हैं नेचुरल रूप से, तो देह की एनर्जी हमको आ रही है। जिस चीज को हम देखते हैं उसकी वाइब्रेशंस हमको आते रहते हैं, वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कम कर रही है। इसलिए अच्छी अवेयरनेस के साथ, अच्छी जागरूकता के साथ, स्मृति के साथ, सब आत्माएं हैं, सबके मस्तक में चमकती हुई मणि है, इस दृष्टि का अभ्यास बढ़ाना, ये भी अनेक व्यर्थ को समाप्त करने की विधि है। क्योंकि बहुत आत्माओं में व्यर्थ चलता है इम्प्योरिटी से, देह के आकर्षण से, बाबा की मुरलियों में आता ही रहता है, पीछे आया था, संसार में काम और क्रोध की आग लगी हुई है। ये अग्नि, सचमुच ये अग्नि ही सभी तरह के डिस्टरबेंस का, टेंशन का, क्राइम का, संसार में बढ़ी हुई समस्याओं का, ये दो ही कारण हैं मूल रूप से, काम क्रोध की बढ़ी हुई अग्नि। और पीछे बाबा ने कहा बच्चू बादशाह, याद है ना, ये दोनों सब पे राज कर रहे हैं, तब कोई ऐसी फिल्म आदि कुछ निकली होगी, कोई ड्रामा या कहानी चलती होगी। तो हम आत्मिक दृष्टि को बहुत बढ़ाएं और एक संकल्प कर लें, हमने पवित्रता का मार्ग अपना लिया है, दिल से अपना लिया ना, किसी के कहने से नहीं, जबरदस्ती नहीं। जिन्होंने सच्चे दिल से अपना लिया है वो चिंतन करें, एक बार हमने स्वेच्छा से या बाबा की इच्छा से पवित्रता का मार्ग अपना लिया, अब इसके विपरीत जो चीजें हैं वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। किसी को शुगर हो गया, कितनी भी सुंदर सुंदर मिठाइयां सजी हों, वो क्या कहेगा, ये अपने काम की नहीं। मन को मार के भी इच्छा तो होगी, पर मन को मार के भी उधर से ध्यान हटाएगा ना, नहीं भाई। पवित्रता का मार्ग ही हमारा मार्ग है। संसार में जितनी भी चाहे पवित्रता हो, गंदे आकर्षण हो, संकल्प कर दें, वो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। अब हमें उस मार्ग पर जाना ही नहीं तो सोचना क्या, चिंतन करें सभी अपने से, क्योंकि प्योरिटी सूक्ष्म कर देना, चित्त को निर्मल कर देना, चित्त की सब इम्प्योर जो वृत्तियां हैं उनको समाप्त कर देना, ये बहुत बड़ी साधना है। तो लक्ष्य बना लेंगे, बाबा ने जो होमवर्क दिया है 2 मास का दिया हुआ ना, अब थोड़ा सा बचा है, तो हम सभी रोज सवेरे उठ के ये होमवर्क याद करेंगे। बाबा के सामने हमने दृढ़ता की है, वायदा कर लिया है, हाथ उठा दिया है, ये याद करेंगे। इनका बल मिलता है ना हमें, हम कहीं निगेटिव हो जाएं, हम कहीं व्यर्थ के बहाव में बह जाएं, तो जब हम ये चीज याद करते हैं कि बाबा ने मना किया है, हमने ये गिफ्ट दे दी है, हमें इनसे मुक्त होना है, तो आधा फोर्स स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो सब बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे और हमें भविष्य में संसार को बहुत कुछ देना है, काम आना है हमें संसार के। जैसे स्टूडेंट अपने पढ़ाई के 1 मास पर बहुत अटेंशन देता है कि ये हमारे भविष्य को उज्जवल करने वाला मास है, जितने अच्छे मार्क्स हमारे आ जाएंगे वो हमें काम आएंगे। हम भी सोच लें ये वर्तमान समय हमारे भविष्य को ऐसा योग्य बनाने वाला है कि हम संसार के काम आएंगे। उन्हीं आत्माओं का संसार में महत्व भी बहुत होगा, जो ऐसी आत्माएं होंगी, अगर हमें मान भी चाहिए, मान चाहता तो सबको है, हमें मान भी चाहिए तो सारा संसार हमें मान दे, और वो तब देगा जब हम संसार के काम आएंगे। ऐसा मान हमें चाहिए, ये छोटा मान नहीं, संसार के दिलों में हमारा मान हो जाए, ठीक है ना, हम उन्हें सुख देने लगें, और ये काम वही कर सकेंगे जो व्यर्थ से मुक्त होकर अच्छे योगी बन जाएंगे। संकल्प करें, ओम शांति। चलो बिल्कुल स्थिर करेंगे बुद्धि को, बुद्धि योग स्थिर हो जाए, केवल बाबा दिखाई देगा, सर्वशक्तिमान, मैं आत्मा इधर और ऊपर सर्वशक्तिमान, दोनों कंबाइंड।